कुंज बिहारी। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रक्षिस कौन फाउंडर आचार्य शिव दि होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कान वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद All glory to Simple Devotees, All glory to Simple Devotees, All glory to Simple Devotees, All glory to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 45 निकाल लिया सबने बोलिए। अदृष्ट पूर्वम रसितोऽस्मि दृष्ट्वा बोलिए। अदृष्ट पूर्वम रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवे स जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवे स जगन्निवास। शब्दार्थ बोलिए। अदृष्ट पूर्वम पहले कभी ना देखा गया ऋषितः हर्षित अस्मि हूँ दृष्ट्वा देखकर भयेन भय के कारण च भी प्रव्यथितम विचलित भयभीत मना मन मे मेरा तत् वह एवं निश्चय ही मे मुझको दर्शय दिखलाइए देव हे प्रभु रूपम रूप प्रसीद प्रसन्न होइए देव ईश ईशों के ईश जगत निवास हे जगत के आश्रय। मेरे पीछे बोली अनुवाद। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, मैं जो पहले नहीं देखा था उसको देख करके हर्षित हो रहा हूं। क्या? कृष्ण का विश्वरूप। कृष्ण का विश्वरूप अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था, है ना। और भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारे अलावा और मैंने पहले किसी को ये रूप नहीं दिखलाया, है ना। तो अर्जुन बहुत भाग्यशाली हैं, है? और भगवान ने कहा कि आगे भी कोई नहीं देख सकता है। वेदों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, किसी भी उपाय से कोई नहीं देख सकता आगे भी, है ना। तो अर्जुन को भगवान ने ठप्पा लगा दिया कि तुम्हारे जैसा भाग्यशाली ना कोई हुआ ना कोई होगा जिसको मैंने ये रूप दिखलाया, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बहुत हर्षित हो रहा हूं, हा? आपका ऐसा रूप देख करके जो पहले कभी नहीं देखा। भय ने चाह प्रभम मनो में, परंतु साथ साथ मेरा मन भयभीत, भय से व्यथित है। देव में दर्शय देव रूपम, इसलिए हे देव मुझे आप उसी रूप को दिखलाइए। प्रसिद्ध देव इस जगत निवास है, तो हे देवताओं के स्वामी जगत के निवास आप प्रसन्न होइए, है ना। तो मुझे आप वही रूप दिखलाइए। कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप दिखलाइए, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वे उनके प्रिय मित्र हैं और मित्र रूप में वे अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या बात बता रहे हैं कि पूरी भगवद गीता जो कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको ही सुना रहा हूं, और किसी को नहीं सुना रहा हूं। क्यों? भक्तों से मैं सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, है ना। तो अर्जुन को भगवान ने इसलिए गीता सुनाई है, मित्र। और मित्र का स्वभाव क्या होता है? मित्र का स्वभाव होता है अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख करके प्रसन्न होना, ईर्ष्या नहीं करता, है कि नहीं, है? जो मित्र नहीं है, शत्रु है, तो वो आपके ऐश्वर्य को, धन संपत्ति को देख करके क्या करता है? ईर्ष्या करता है। तो आप उसको थोड़ी बताना चाहोगे, है कि नहीं? लेकिन अपने मित्र को आप बताना चाहोगे कि मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हाँ आप बताते हो। क्यों बताते हो? क्योंकि वो सुन करके प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, है ना। तो अर्जुन कृष्ण की महानता सुनकर के चूंकि प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, मित्र हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। रहस्यम ही एतद उत्तमम, उत्तम रहस्य है। तो कृष्ण अपने रहस्य की बातें, अपने जो गुप्त बातें हैं, है ना, तो धनी व्यक्ति जो है ना बताता है मैं करोड़पति हूं, मैं इतना जो है ना करोड़ रुपया मेरा इस बैंक में है, इस बैंक में मेरे इतने करोड़ रुपए हैं, है ना। तो उस व्यक्ति को बताता है जो प्रसन्न हो, है ना। तो अर्जुन प्रसन्न होते हैं, है ना, कि कृष्ण ईश्वर है। और कृष्ण अर्जुन को जो है इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि हमारा मित्र जो है ना कैसा प्रभावशाली है, है कि नहीं। तो अर्जुन प्रसन्न हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि क्योंकि अर्जुन कृष्ण के प्रिय मित्र हैं और मित्र अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख करके बहुत पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। अर्जुन ये देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उनके मित्र कृष्ण क्या है? भगवान है, और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हर्ष इस बात का है, है ना। अब आगे अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन भय से व्यथित है, तो प्रभुपाद समझाते हैं किंतु साथ ही वे इस विराट रूप को देखकर भयभीत हैं कि उन्होंने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अर्जुन क्यों डर रहे हैं कि मैंने कृष्ण का बहुत अपराध किया है, इनकी तो हमेशा पूजा होनी चाहिए, हर समय इनको नमस्कार किया जाए, प्रणाम किया जाए, स्तुति की जाए, पूजा की जाए, आरती उतारी जाए, है ना। लेकिन मैंने तो कभी इनकी पूजा नहीं की, मैंने तो इनका कभी भी सम्मान नहीं किया, और इनसे हमेशा बराबर का व्यवहार करता रहा, और इनको जो है कृष्ण बोलता था, सखा बोलता था, और हंसी मजाक करता था, तो मैंने बड़ा अपराध किया। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन के भय का एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि भगवान का रूप ही ऐसा भयानक है। वैसे अर्जुन ने तो ये बात कही है कि मैंने बहुत जो है अपराध किया है, लेकिन बाद में 44वें श्लोक में कहा है कि आप तो मेरे अपराधों को सहन करोगे, क्योंकि एक मित्र का स्वभाव है कि अपने मित्र के अपराधों पर ध्यान नहीं देता है। तो आप मेरे मित्र हो या पिता हो, मेरे मित्र हो, मेरे पिता हो, मेरे स्वामी हो, है ना, तो ये तो आप क्षमा कर दोगे। तो इसलिए अर्जुन का वो डर तो दूर हो गया कि मैंने अपराध किया। अगर पिछले श्लोक को देखा जाए तो उन्होंने जो ना ये कह करके शांति पाली है अर्जुन ने कि आप मेरे अपराधों को क्षमा करोगे। पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता ही है ना, और मित्र अपने मित्र के अपराधों को क्षमा करता ही है, तो आप क्षमा करोगे ही मेरे अपराधों को। लेकिन डर फिर भी लग रहा है, क्योंकि कृष्ण का ये जो रूप है तो इस रूप से कोई व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, है ना। तो प्रेम करने के लिए जो है कृष्ण का क्या है, आदि रूप, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, है ना। तो आदि पुरुष जो है ना गोविंद है, जिनसे भक्त प्रेम कर सकते हैं, प्रेम का संबंध बना सकते हैं। तो यहां अर्जुन को परेशानी हो रही है कि कैसे प्रेम का संबंध बनाए भगवान के स्वरूप के साथ में, है ना। तो भये न चा प्रभ्यसितम मनोमेम, तो प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा है कि आप मुझको वही रूप दिखलाइए। अब वही रूप का मतलब कृष्ण रूप भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, नारायण रूप कह रहे हैं। इस श्लोक में तो ऐसा कुछ नहीं है कि अर्जुन ने कहा कि अपना नारायण रूप दिखलाइए, तो वो कृष्ण रूप भी हो सकता है कि आप मुझे अपना वही रूप दिखलाइए। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि अर्जुन ने नारायण रूप देखना चाहा है, तो ये कैसे, क्योंकि अगले श्लोक में अर्जुन ने फिर कहा कि क्या तेने विरूपण चतुर्भोजन है। अगले श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि तेने विरूपण चतुर्भोजन है सहस्त्र बाहु भव विश्व मूर्ते, तो अपना चतुर्भुज रूप में आप जो है ना आप प्रकट होइए। सहस्त्र बाहु, आप अभी हजार भुजाओं वाले हैं, लेकिन अब आप चतुर्भुज रूप बन जाइए, है ना। तो इसका मतलब यह है कि इस श्लोक में अर्जुन ने जो कहा है वो भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की बात कही है। तो नारायण रूप, तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। तो प्रभुपाद जी भगवान के इस विराट रूप को महत्व नहीं दे रहे हैं। क्यों महत्व नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इस विराट रूप से कोई भक्त जो है ना प्रेम नहीं कर सकता, है कि नहीं, सेवा नहीं कर सकता, केवल क्या कर सकता है, भय कर सकता है, भयभीत हो सकता है बस, और कोई दूसरा संबंध नहीं बन सकता है विराट रूप के साथ में, केवल भय का संबंध बन सकता है, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं, और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं, है ना। तो ये बड़े रहस्य की बात है, वैकुंठ जगत में बहुत से वैकुंठ हैं, और प्रत्येक वैकुंठ में भगवान चार भुजाओं के हैं, लेकिन अलग अलग नामों से हैं। किसी में वो नारायण नाम के भगवान है, और कहीं पर माधव, कहीं पर केशव, कहीं पर वामन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, इस प्रकार के अलग अलग नामों से भगवान विद्यमान है। तो आगे प्रभु लिखते हैं, इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहते थे। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में जो भगवान अलग अलग वैकुंठों में निवास करते हैं और चार भुजाओं के हैं, लेकिन अंतर है अगर कुछ तो उनके जो आयुध हैं उनके क्रम में अंतर है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चार हाथों में चार चीजें निश्चित हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? हाँ, उल्टा पलटा उल्टा पलटा रहता है। इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग होते हैं और उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से अगर चारों का जो है ना अगर क्रम बदला जाए, अलग अलग क्रम बनाया जाए चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म का, तो इस प्रकार से 24 अलग अलग क्रम बनते हैं। तो इसमें वो 24 भगवान के नाम दिए गए हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, तो ये मैं जो है आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें आप ऐसे समझो कि भगवान के जो है चार भुजाएं हैं, तो पहली भुजा जो है ना मानी गई है दाहिनी तरफ की नीची, दाहिनी तरफ जो नीचा हाथ है वो पहला, और फिर दाहिना ऊंचा दूसरा हुआ, फिर बायां ऊंचा तीसरा, फिर बायां नीचा चौथा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह के क्रम में जो है अलग अलग आयुध हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है क्रम है गदा का, गदा नीचे और शंख ऊपर, फिर चक्र ऊपर और कमल नीचे, इस प्रकार से। तो ये वासुदेव भगवान है, ये वासुदेव भगवान है जिनके गदा, फिर शंख, फिर चक्र और फिर कमल, इस प्रकार से है। फिर शंकरसन भगवान के कैसे हैं? शंकरसन भगवान का गदा, फिर शंख, फिर कमल और फिर चक्र, इस तरह से। वासुदेव गदा शंख चक्र पद्म धरण, शंकरसन गदा शंख पद्म चक्र कर्ण। फिर प्रद्युम्न भगवान, उनका क्या है? चक्र, फिर शंख, फिर गदा, फिर कमल। और अनिरुद्ध भगवान का क्या है? चक्र, गदा, शंख और कमल, इस प्रकार से। प्रद्युम्न चक्र शंख गदा पद्म धरण, अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म कर्ण। फिर केशव भगवान कैसे हैं? कमल, फिर शंख, फिर चक्र और फिर गदा, ये केशव भगवान है। फिर नारायण भगवान कैसे हैं? शंख, फिर कमल, फिर गदा, फिर चक्र। श्री केशव पद्म शंख चक्र गदा धरण, नारायण शंख पद्म गदा चक्र धरण। फिर माधव भगवान कैसे हैं? गदा, फिर चक्र, फिर शंख, फिर कमल। और गोविंद भगवान कैसे हैं? चक्र, फिर गदा, फिर पद्म और फिर शंख। श्री माधव गदा चक्र शंख पद्म कर्ण, श्री गोविंद चक्र गदा पद्म शंख धरण। फिर भगवान विष्णु कैसे हैं? गदा, फिर पद्म फिर शंख, फिर चक्र। और मधुसूदन भगवान कैसे हैं? चक्र, फिर शंख, फिर कमल, फिर गदा। विष्णु मूर्ति गदा पद्म संघ चक्र कर, मधुसूदन चक्र संघ पद्म गदा धर। फिर त्रिविक्रम भगवान कैसे हैं? कमल, फिर गदा, फिर चक्र, फिर शंख। और वामन भगवान कैसे हैं? शंख, चक्र, गदा और कमल। त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंख कर्ण, श्री वामन शंख चक्र गदा पद्म धर। फिर श्रीधर भगवान कैसे हैं? कमल, फिर चक्र, फिर गदा और फिर शंख। और हृषिकेश भगवान कैसे हैं? गदा, चक्र, कमल और शंख। श्रीधर पद्म चक्र गदा शंख कर्ण, ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंख धरण। फिर पद्मनाभ भगवान कैसे हैं? शंख, कमल, चक्र और गदा। और दामोदर भगवान कैसे हैं? कमल, चक्र, गदा और शंख। पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा कर, दामोदर, दामोदर पद्म चक्र गदा शंख धर। पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं? चक्र, कमल, शंख और गदा। अच्युत भगवान कैसे हैं? गदा, कमल, चक्र और शंख। पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदा धरन, श्री अच्युत गदा पद्म चक्र शंख धर। नरसिंह भगवान कैसे हैं? चक्र और पद्म और गदा और शंख। जनार्दन भगवान कैसे हैं? कमल, चक्र, शंख और गदा। अगर तीन बताऊं तो चौथा तो आपको बताना चाहिए ना। श्री नृसिंह चक्र पद्म गदा शंख धर, जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा कर। अब हरि भगवान कैसे हैं? शंख, चक्र, पद्म और गदा। और श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं? ये कृष्ण, ये मुरलीधारी कृष्ण नहीं है, ये विष्णु है, एक विष्णु है जिनका नाम कृष्ण है। तो इस श्री कृष्ण अपने हाथों में कैसे धारण करते हैं? शंख, गदा, कमल और चक्र। श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा कर, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र कर। अधोक्षित भगवान कैसे हैं? कमल, गदा, शंख और चक्र। और उपेंद्र भगवान कैसे हैं? शंख, गदा, चक्र और पद्म या कमल, ठीक है। अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र कर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्म कर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्म कर। तो इस प्रकार से ये हमने आपको 24 भगवान के नाम बतलाए और उनका आयुधों का क्रम बतलाया कि किस प्रकार के क्रम है भगवान के आयुध के। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए। अब अर्जुन कह रहे हैं कि आप वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए, तो वही का मतलब वो इशारा कर रहे हैं पहले से कि पहले जैसा, तो पहले कभी देखा होगा अर्जुन ने कृष्ण का, पहले कभी देखा होगा तभी तो कह रहे हैं कि आप वही मुझे दिखलाइए। हमेशा तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में नहीं रहते, हमेशा तो द्विभुज रूप में रहते हैं। कृष्ण के मित्र हैं, अर्जुन के मित्र हैं, तो अर्जुन के जो सखा हैं और पार्थ सारथी हैं तो वे तो दो भुजाओं के हैं, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए। तो इसका क्या मतलब है, किस समय की बात कर रहे हैं अर्जुन कि मुझे आप वही चतुर्भुज रूप दिखलाइए? इस वर्णन से ऐसा पता चलता है कि जब अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपना विश्वरूप दिखलाइए, तो भगवान जो है जब अपना विश्वरूप दिखलाते हैं, हालांकि पहले इतना वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान ने पहले अपना चार भुजाएं प्रकट की और फिर उन्होंने भुजाएं अपनी बढ़ाते गए, है ना। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोदय सहस्रशः, कि मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देखो, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है ना अपनी भुजाएं भी ज्यादा बढ़ानी शुरू की और फिर अपने रूप भी बढ़ाने शुरू किए। तो अर्जुन को भी भगवान ने पहले अपने सैकड़ों रूप दिखलाए और फिर सैकड़ों से हजारों रूप कर दिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं एकदम से, मतलब वो उन्होंने मतलब अपना विस्तार नहीं किया है, बल्कि धीरे धीरे, है ना। और पहले अपने सैकड़ों रूप दिखलाए और सैकड़ों से फिर हजारों हो गए, हजारों से फिर लाखों, लाखों से फिर करोड़ों, इस तरह से अनंत रूप। आखिर जो है ना फिर अर्जुन को कहना पड़ा अनंत रूप, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कि अब तो जो है ना मैं आपका ना तो अंत देखता हूं ना आदि देखता हूं, पश्चा में विश्वेश्वर विश्व रूप है, अनंत रूप भी अर्जुन ने कहा है भगवान को, है ना। अनंत रूप तो भगवान बाद में हुए, पहले सैकड़ों रूप हुए, फिर हजारों रूप हुए, फिर लाखों, फिर करोड़ों, फिर अरबों, इस तरह से वो बढ़ाते गए। उसी प्रकार से अपनी भुजाएं भी अनंत बाहु, सहस्त्र बाहु, है ना, चतुर्बाहु। तो भगवान ने जो है ना पहले चतुर्भुज रूप दिख रहा है, फिर सहस्त्र भुज, है ना, हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों, इस प्रकार से भुजाएं भी बढ़ाते गए भगवान। तो अर्जुन जो कह रहे हैं तदेव में दर्शय देव रूपम, कि हे देव आप मुझको आप वही रूप दिखलाइए। इसका मतलब यह है कि वो चतुर्भुज रूप दिखलाइए जो आपने इस विश्व रूप को दिखाने के पहले प्रकट किया था। तो कृष्ण अपना जो विश्व रूप दिखलाते हैं उसका क्रम यही है कि पहले वे चतुर्भुज रूप बनते हैं, दो भुजाओं से चार भुजाएं होती हैं उनकी, और फिर चार भुजाओं से फिर वो अपना बढ़ते जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब भगवान जो है जब आएंगे मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में आएंगे, तो पहले चतुर्भुज रूप होंगे और चतुर्भुज रूप से फिर वो क्या होंगे, द्विभुज रूप होंगे, है ना। तो अर्जुन जो कह रहे हैं तदेव में दर्शय देव रूपम, कि आप मुझे वही रूप दिखलाइए। और फिर क्या कहते हैं अर्जुन अंतिम पंक्ति में, क्या कहते हैं, प्रसीद देवेश जगन निवास है, प्रसन्न होइए हे देवताओं के स्वामी, आप प्रसन्न होइए हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। तो जगन निवास आप प्रसन्न होइए, इसका मतलब क्या है, अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो जगत प्रसन्न होगा, हाँ इसका यही मतलब है। यस्मिन प्रसन्ने, हाँ यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो भवति, इस प्रकार का है ना। तो शास्त्र का ये कहना है कि अगर इनको प्रसन्न किया जाए तो सब प्रसन्न होंगे, अगर इनको प्रसन्न ना किया जाए तो कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है, है ना। आप प्रसन्न करते रहो, है ना, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं होता है, सब नाराज होते हैं कि नहीं। तो रहस्य है भगवद गीता में, ये रहस्य जो है जगह जगह प्राप्त होता है। कृष्ण को प्रसन्न करो, कृष्ण को प्रसन्न करो तो सब प्रसन्न है, सब दिशाएं प्रसन्न है। और अगर कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया तो फिर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है, आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, ना अपने को प्रसन्न कर सकते हैं ना किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, है? तो प्रसिद्ध देवेश जगन निवास है, यही जो है जीवन की सफलता है, अगर कृष्ण को प्रसन्न कर लिया जाए। इसलिए किसी भक्त ने भजन गाया है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, है? जो मुझे है काम ईश्वर से, मुझे जो ना ईश्वर को प्रसन्न करना है, अगर जगत रूठे तो रूठने दे, है ना। कहां तक रूठेगा जगत, आखिर प्रसन्न होना ही पड़ेगा। हाँ तो ये है असली। लेकिन आजकल जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, समाज सेवा, देश सेवा, मानव सेवा, है ना, ये सब जो है ना असफल होती हैं, असफल होती हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते, इसलिए सब असफल होती हैं, है ना। और कृष्ण की सेवा से मानव सेवा, देश सेवा, समाज सेवा सब होती है। ये रहस्य नहीं जान पाते, ये रहस्य नहीं जान पाते। जैसे वृक्ष की जड़ है वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो जड़ के प्रसन्न होने से ही ये पूरा वृक्ष प्रसन्न हो रहा है ना। तो ये जो ना बड़ी व्यवहारिक बात है, लेकिन जो व्यक्ति अनुभवी नहीं है तो वो समझ नहीं सकता इस बात को। जैसे मैं भी, मुझे भी याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो घर में तुलसी का पौधा सूख गया, तो मेरे पिताजी बोले कि देखो तुलसी का पौधा सूख गया। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सूख गया, और सूख गया तो सूख गया, अब थोड़ी हरा भरा हो सकता है, हैं? जो पौधा सूख गया तो सूख गया, अब हरा भरा थोड़ी हो सकता है। तो मेरे पिताजी बोले कि अभी एक लोटा पानी लाओ और मिट्टी में डालो, तुलसी की मिट्टी में डालो। तो मैंने कहा पानी लेके आओ और इस गमले में डालो। तो मैंने विचार किया कि पिताजी कह रहे हैं तो मुझे तो करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बेकार का काम बता रहे हैं, है ना। गमले में पानी डालने से फायदा क्या है, है? ये पूरा पेड़ तो सूख गया, अब गमले में पानी डालने से क्या फायदा है। तो पिताजी बोले कि डालो पानी और देखो शाम को ये पूरा पौधा हरा हो जाएगा, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, है? इतनी बड़ा पेड़ था तुलसी का जैसा ये है। तो मैंने उनकी बात को तो मना नहीं किया, क्योंकि शिष्टाचार के विरुद्ध था, लेकिन लगा कि बात तो बिल्कुल गलत बोली है। मन में तो यही विचार आया कि पिताजी ने जो बात बोली है वो सही नहीं बोली है, गलत बोली है। लेकिन शिष्टाचार तो यही है कि गलत बोला है तो भी मान लो, स्वीकार कर लो। तो इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया और बात को दिमाग से निकाल दिया कि ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, पौधा कैसे हरा भरा हो जाए, सूखा पौधा कैसे हरा भरा हो जाएगा, मिट्टी में पानी डालने से कैसे हरा भरा हो जाएगा। शाम को जो है जब फिर मिले पिताजी मुझे और उन्होंने दिखाया, बोले देखो मैंने कहा था ना तुम्हें पानी डाला है जड़ में और वो देखो हरा भरा हो जाएगा, अभी देखो हरा भरा हो गया। तो जब मैंने देखा कि पूरा पौधा मतलब देखो हजारों पत्तियां हैं, है ना, सब हरी हो गई, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। तो जब तक ना किया जाए और ना देखा जाए तब तक कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता इस चीज को। तो इसलिए जो है ये जो रहस्य है, भगवत गीता का रहस्य है, तो ये व्यक्ति करके जो है ना देखता है, ऐसा और नहीं, करके व्यक्ति जो है ना इसका प्रयोग करे और देखे परिणाम। तो ये जो भगवत गीता है ये वो प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई मानो मान लो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, ये चीज वो नहीं है। ये विज्ञान है, जो भगवत गीता है ये एक विज्ञान है। कृष्ण को प्रसन्न करने से अपनी प्रसन्नता होती है और सबकी प्रसन्नता होती है। अगर आप सबसे बड़े स्वार्थी हैं कि अपना ही भला करना चाहते हैं तो भी आप कृष्ण को प्रसन्न करो। अगर आप बहुत बड़े परमार्थी हैं कि सबका भला करना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, हैं? या सब जीवों का भला करना चाहते हैं तो भी कृष्ण को प्रसन्न करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप चाहे वृक्ष की एक पत्ती को हरा करना चाहते हो या सब पत्तियों को हरा करना चाहते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। नान्या पंथा विद्यते नाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, है ना। लेकिन मूर्खों की कमी नहीं है इस संसार में, मूर्खों की कमी नहीं है। इसलिए यत मत तत्पत, जो तुम्हारा मत हो उसी रास्ते पर चलो, बेवकूफ, है ना। जो तुम्हारा मत हो कैसे तुम्हारा मत हो, है ना। अगर इस पेड़ के जो है ना पत्तों को हरा करना है तो और कोई उपाय ही नहीं है। शास्त्र कहते नान्या पंथा विद्यते नाय, कि और कोई दूसरा पंथ ही नहीं है। तमे विदित्वाति मृत्यु में इति, उनको जान करके ही, उनको प्रसन्न करने से ही आप मृत्यु से छूट सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मूर्ख लोग क्या कहते हैं, यत्मत तत्पत, जो तुम्हारा मन, जो तुम्हारी मर्जी हो वही रास्ता, जो तुम्हारी मर्जी वो रास्ता है। तो कितना गलत है, इसी को पाखंड कहते हैं। तो कलयुग में बहुत पाखंड फैल रहा है ना। लेकिन अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा, क्या कृष्ण के शरीर में संपूर्ण विश्व है, सब कुछ है कृष्ण के शरीर में, सब देवता भी कृष्ण के शरीर में, प्रत्यक्ष देखा। अगर कृष्ण प्रसन्न हो तो सब देवता प्रसन्न है, अपने आप प्रसन्न है ना। और अर्जुन वास्तव में जो है कृष्ण के भक्त होने के कारण अर्जुन ने स्वयं देखा भी कि जब स्वर्ग में गए तो इंद्र का सबने सम्मान, अर्जुन का सबने सम्मान किया, जबकि अर्जुन ने किसी भी देवता की अलग से पूजा नहीं की थी, या किसी भी देवता को अलग से प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया था। इन सब देवता प्रसन्न हो रहे, अपने आप प्रसन्न हो रहे, क्यों, कृष्ण के मित्र हैं इसलिए। हनुमान जी जो है जब लंका पार करते हैं, नहीं समुद्र पार करते हैं, समुद्र पार करके लंका जाते हैं, तो समय वो भी प्रत्यक्ष अनुभव किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया है? और वो बड़ा आश्चर्य करते हैं हनुमान जी कि चूंकि मैं राम के कार्य से मैंने समुद्र पार किया है, तो इसलिए ये कितना आश्चर्य है कि मैनाक पर्वत जो है ना मेरा सम्मान कर रहा था। और मैनाक पर्वत ने कितना सम्मान किया हनुमान जी का, वैसे वो समुद्र के ऊपर उठता नहीं कभी है ना, लेकिन वो समुद्र के ऊपर उठा। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है, क्योंकि पर्वत जो है ना एकदम आकाश से जो है मतलब आकाश को छूने लगा। तो हनुमान जी को लगा कि ये पर्वत जो है ना मेरा रास्ता रोक रहा है। तो हनुमान जी ने तो अपने सीने से मतलब उसको ठोकर मारी, उसका एक जो है ना शिखर भी तोड़ दिया। लेकिन फिर मैनाक पर्वत स्वयं जो है ना मनुष्य शरीर धारण करके अपने शिखर के ऊपर खड़ा होकर के हनुमान जी को कह रहा है कि नहीं नहीं आप विश्राम करो, आपकी विश्राम के लिए मैं आया हूं, ऊपर उठा हूं, आप थोड़ा विश्राम करो आपकी सेवा के लिए। देखो जबकि पर्वत को चोट मार दी और उसको तोड़ दिया, तो भी वो जो मैनाक पर्वत है वो मनुष्य रूप धारण करके कह रहा है कि नहीं नहीं मैं आपके कार्य में बाधा डालने के लिए नहीं आया हूं, आपको विश्राम देना चाहता हूं इसलिए। तो चूंकि हनुमान जी राम को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए मैनाक हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। तो देखो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है ये बातें। ए बच्चे सोर नहीं, सोर नहीं, सोर नहीं। तो अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप देखेंगे ये सब आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। आप कृष्ण की पूजा करते हो और देखो कि सब आपकी पूजा करेंगे, सब आपकी पूजा करेंगे, है ना। इतना जो है ना ये जो है ना गहरा सत्य है, है ना। हनुमान जी ने फिर और भी आश्चर्य किया, जब उनकी पूंछ में आग लगी तो शुरू में तो उनको कुछ डर लगा, लेकिन फिर देखा कि आग जो है उनको ठंडी लग रही है। आग ठंडी लग रही है उनको, वो सोचते तो बड़े आश्चर्य की बात है, आग ठंडी लग रही है ना, चलो तब तो मैं पूरी लंका को भी ठंडा कर देता हूं। तो मैं फिर पूरी लंका को भस्म किया उस अग्नि में, उनका कि ठीक है अब अग्नि को तृप्त मैं भी करता हूं, हैं। तो पूरी लंका को उन्होंने ठंडा किया आग से, है ना। तो उन्होंने फिर माना कि सीता जी का प्रभाव है ये, हाँ कि आग मुझे ठंडी लग रही है ना। और यात्रा जो है बड़ी सफल रही, समुद्र पार किया उन्होंने, यात्रा बड़ी सफल रही। तो उन्होंने मतलब बार बार ये विचार करते थे कि राम के कार्य से जो ना, चूंकि मैं राम के कार्य में लगा हूं, इसलिए सब जो ना कार्य मेरे सफल होते जा रहे हैं, है ना। और एक घटना नहीं, हजारों हजारों घटनाएं आप देख सकते हो शास्त्रों में, या जो है ना किसी के भी जीवन में आप देख सकते हो, हजारों हजारों घटनाएं देख सकते हो। शास्त्र में मृगादि की घटना है, भिखारी को चिंता थी कि अगर मैं अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दूंगा तो फिर मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा, मुझे फिर कहां से कौन मुझे खाना खिलाएगा। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, अपने धनुष को तोड़ो तुम। वो कहता है कि मैं धनुष को तोड़ दूंगा तो फिर मेरी जीविका कैसे चलेगी, इस धनुष के द्वारा मैं कुछ पशुओं को मार करके और उनकी खाल बेचता हूं और उस तरह से मेरा जीवन निर्वाह होता है। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम बिल्कुल बंद, धनुष तोड़ो, अपना तोड़वा दिया। तो वो कहता है फिर मैं मुझे भोजन कौन खिलाएगा, कहते हैं कि मैं खिलाऊंगा तुमको भोजन। अब नारद जी थोड़ी खिलाने वाले हैं भोजन किसी को, है ना, लेकिन उसको जो है ना भगवान में विश्वास नहीं है, इसलिए नारद जी कहते हैं कि ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूं तुम्हारे भोजन की। तो वो सोचता है भाई महात्मा है अगर बोल रहे हैं तो वो तो जरूर करेंगे, महात्मा का वचन है। नारद जी ने ये चिंता नहीं करी कि मतलब इसको कौन भोजन खिलाएगा, कैसे भोजन खिलाएगा। नारद जी ने क्या कहा कि तुम केवल ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है दिन रात तुलसी जी के पास में बैठ करके, हैं, और दिन भर दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खाना मैं भेजूंगा, तुम्हारा भोजन मैं तुम्हें भेजूंगा, हैं, तो ठीक है। और नारद जी चले गए कह करके। नारद जी को विश्वास था कि अगर वो दिन रात हरे कृष्ण का जाप करेगा तो भगवान खिलाएंगे उसको। और फिर हुआ क्या है कि वो अपने सबको छोड़ करके बैठ गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हैं। और वहां के गांव वासियों को पता चला अरे मृगारी तो साधु बन गया, हैं, अरे मृगारी साधु बन गया, हाँ मृगारी साधु बन गया, एक से दूसरे दूसरे तीसरे साहब चर्चा करते मृगारी साधु बन गया, मृगारी साधु बन गया, अरे साधु के दर्शन करने चले, साधु के दर्शन करने चले तो कुछ तो भेंट देनी थी साधु को, है ना। तो इतना भोजन आने लगा कि उसकी उल्टी चिंता हो गई कि मैं क्या करूंगा इतना भोजन का। उसको चिंता थी कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा, अभी उसकी उल्टी चिंता हो गई, इतना भोजन आ रहा था कि मैं क्या करूंगा इतना भोजन कैसे खाऊंगा। तो फिर वो बांटने लगा, जितना खा सके खाए बाकी बांटे। तो ये है। और भी एक घटना है, संत वो एक है मलूकदास, है ना, मलूकदास, संत मलूकदास। तो पहले वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे और साधु संतों की भी खिल्ली उड़ाते थे। तो एक उनके गांव में संत आए तो राम कथा सुनाई, तो वो राम कथा सुनाते सुनाते उन्होंने ये बात बोली कि राम जी तो सबको खिलाने वाले हैं। तो अब ये जो ना कथा में बैठ गए, अब प्रश्न करने का तो मौका मिला नहीं कथा के बीच में। तो जब कथा समाप्त हो गई सब चले गए तो ये पहुंचे महाराज के पास, बोले महाराज आपने क्या बोला कि राम जी सबको खिलाते हैं। बोले हाँ बेटा सबको खिलाते हैं। तो बोले अच्छा तो महाराज मैं अगर ना खाऊं तो क्या राम जी मुझे खिला देंगे। तो उनके मुंह से निकल गया हाँ हाँ बेटा जरूर खिला देंगे। अब इन्होंने सोचा कि अब संत महाराज की बात को मुझे अब तो झूठा करना है, अब मैं अगर नहीं खाऊंगा तो कौन खिलाएगा। तो सोचा कि अगर घर में बैठ जाऊंगा और नहीं खाऊंगा तो घर वाले जबरदस्ती खिला देंगे, तो मैं जंगल में जाता हूँ, ऐसे जंगल में जाता हूँ जहां निर्जन कोई व्यक्ति नहीं जाएगा और किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ, और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाऊंगा निर्जन वन में। तो निर्जन वन में जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, पेड़ में किसी को पता नहीं, सोचे आप राम जी कैसे खिलाएंगे, देखता हूँ राम जी कैसे खिलाते हैं मुझे, अब उसको कौन खिलाए। तो जो सवेरे से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, हैं, अब उसने सोचा आप संत महाराज की बात तो झूठी निकली, शाम हो गई और राम जी थोड़ी खिलाने वाले मुझे। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ यात्रियों का दल आ रहा है, तो उन्हें कुछ पता नहीं है कि किस पेड़ के ऊपर कौन बैठा है, लेकिन उसी पेड़ के नीचे बैठे वो लोग और अपना जो भोजन है वो खोल करके और खाना शुरू किया। अचानक खाते खाते उन्होंने क्या देखा, शुरू किया था मतलब खाना शुरू नहीं किया था, शुरू करने वाले थे और देखा कि धूल उड़ रही है थोड़ा दूर से, और धूल उड़ी तो जरूर डाकू लोग हैं, और डाकू लोग हैं तो हमारे पैसा छीनेंगे। तो वो सोचते हैं कि जो भोजन है वो जाने दो, अपने पैसे को बचाओ। तो अपना पैसा सा लेकर के और भोजन छोड़ करके भागे। अब जो डाकू लोग है वो आए तो पेड़ के नीचे उनको मिला भोजन, तो बोले अरे यार कुछ मिला नहीं, पैसा से तो मिला नहीं, चलो भोजन ही खाओ। तो वो लोग बैठे भोजन खाने के लिए, उनमें से एक डाकू कहता है कि अरे अरे रुको रुको, अभी भोजन मत शुरू करो। क्यों? अरे हो सकता है हमको मारने के लिए वो जहर मिला गए हुए इस भोजन में। अरे तो फिर क्या किया जाए, किसी को खिलाना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, तो किसी को खिलाया जाए। तो कोई कुत्ता भी तो नहीं मिल रहा है यहाँ, किसी कुत्ते को खिला दे रहे तो कोई कुत्ता भी नहीं मिल रहा है। तो एक की नजर पड़ी ऊपर, अरे वो बैठा है ऊपर। अच्छा अच्छा तूने जहर मिलाया हमारे भोजन में। तो ये कहते हैं अरे भैया उस भोजन में जहर नहीं है, तुम लोग खाओ भोजन, अच्छा भोजन है। कहता अच्छा हमको बेवकूफ बनाता है, कहे तुझको खिलाएंगे उधर, अगर नहीं उतरेगा तो हम उतारे तुझको, उतर खा। जबरदस्ती उतार करके भोजन खिलाया, जब पूरा तृप्त हो गए तब फिर उन्होंने छोड़ा, तब उन्होंने भोजन शुरू किया। तो तब से वो जो है ना संत बन गए, इस घटना से वो बहुत बड़े संत बन गए। उन्होंने एक दोहा लिखा, एक दोहा लिखा है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसका मतलब क्या है, अजगर करे ना चाकरी, अजगर जो है ना पड़ा रहता है एक ही जगह पर पड़ा रहता है और अपने अपने उसके मुंह में ही आ जाता है भोजन, वो पड़ा रहता है कई दिन तक, वो पड़ा रहता है तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। अगर कई दिन तक भोजन नहीं मिला है तो फिर धीरे धीरे चलेगा कुछ भोजन ढूंढने के लिए, नहीं तो वो अपना पड़ा रहता है उसके मुंह में ही भोजन आ जाता है ना। तो अजगर कोई चाकरी नहीं करता, और पंछी करे ना काम, और पंछी भी कोई नौकरी नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते हैं पक्षी लोग, है ना, लेकिन भोजन कौन देता है उनको, हाँ दास मलूका कह गए सबके दाता नाम, तो मलुक दास ही कह गए कि सबके देने वाले राम है, है ना। तो इस तरह से यहां इस श्लोक में अर्जुन यही कह रहे हैं, प्रसिद्ध देवी से निवास है, जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। देवेश है, देवताओं के ईश्वर हैं, अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो सब देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। देखो शिव जी अर्जुन से अपने आप प्रसन्न हो गए, अर्जुन ने तो युद्ध किया शंकर जी से और शंकर जी प्रसन्न हो गए। जबकि लोग पूजा करते हैं तो भी शंकर जी प्रसन्न होते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और कभी रुष्ट भी हो जाते हैं, है ना। ये अर्जुन ने शंकर जी से युद्ध किया तो भी प्रसन्न हो गए अर्जुन, है अर्जुन के ऊपर। इसी प्रकार से इंद्र भी अर्जुन के ऊपर प्रसन्न हो गए, अर्जुन ने युद्ध किया इंद्र से और इंद्र भी प्रसन्न हो गए, है ना। और जब स्वर्ग में गए अर्जुन तो उन्होंने देखा जितने देवता सब प्रसन्न है अर्जुन के ऊपर, जबकि कोई परिचय नहीं था अर्जुन का। अग्नि देवता को देखा, पवन देवता को देखा, वायु देवता, है ना, और जो है विश्व देवता हैं, और 12 आदित्य हैं, 49 मरुदगण हैं, अश्विनी कुमार हैं, कितने कितने देवता, और सब अर्जुन को अपना अपना परिचय देते हैं और मिलते हैं और सम्मान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गंधर्व गीत गाते हैं, इतना सम्मान हुआ अर्जुन का। तो अर्जुन को आश्चर्य हो रहा था कि मेरा कोई संबंध नहीं है इनके साथ में, लेकिन ये सब लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं मेरे ऊपर, है ना। तो इससे पता चलता है कि जगन निवास अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं जगन निवास, इसका मतलब यह है कि कृष्ण को प्रसन्न करने से पूरा जगत प्रसन्न होता है, है ना। प्रभुपाद जी ने करके दिखलाया, प्रभुपाद जी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गए थे अमेरिका, है ना, लेकिन पूरा अमेरिका जो है ना प्रसन्न हुआ प्रभुपाद से। रजनीश ने अमेरिका को प्रसन्न करने का प्रयास किया था, रजनीश अमेरिका गए थे अमेरिका के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अमेरिका वालों ने उनको लात मार के भगाया, उनकी किताबें बैन करा दी, और प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है? वहां पर उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का है और सब प्रसन्न। रूपा जी निर्भीक होकर कहते तुम लोगों का समान कुत्ते बिल्लियों जैसा है, तुम लोग कुत्ते बिल्ली जैसे हो। सबकी निंदा की उन्होंने, कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, सब अमेरिका अमेरिकी सरकार खुश, बहुत सम्मान किया। तो ये जो है ना रहस्य है ना, पूरे संसार में जो है ना प्रभुपाद का सम्मान हुआ और प्रभुपाद की विजय हुई केवल एक कारण से, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का नाम फैलाया, कृष्ण का गुणगान किया। इसलिए देखो प्रभुपाद का कितना गुणगान हो रहा है, कितनी प्रभुपाद की पूजा हो रही है, जितने मंदिर वहां प्रभुपाद जी जो है ना बैठे हैं और उनकी पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की प्रसन्नता में लगाया और देखो साफ पूरी दुनिया जो है ना उनके चरणों में झुकी है ना। तो रजनीश का ये हाल हुआ, उन्होंने जो है ना लोगों को खुश करने का प्रयास किया, उन्हीं लोगों ने उनको लात मारी है ना। जिस महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भारतवासियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया और भारतवासियों ने उनको गोली मारी है ना। लेकिन प्रभुपाद ने किसी को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया, नहीं मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आया हूं और मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की बात दोहराता हूं, मैं कृष्ण की बात में कोई बदलाव नहीं करने वाला हूं कि इनको खुश करूं इनको खुश करूं। प्रभुपाद ने साफ कहा मैं कृष्ण का कुत्ता हूं, मुझे जो है ना कृष्ण को खुश करना है, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं, चाहे कोई खुश हो या ना हो। अमेरिका में प्रभुपाद जी आए तो कुछ लोगों ने जो राम कृष्ण मिशन के जो सन्यासी थे तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी जनता को खुश करना है तो आप जो है ना इतने कठोर नियम मत उनके ऊपर लागू करो कि मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, शराब नहीं, ये सब नहीं, बल्कि उनके रहन सहन को आप भी स्वीकार करो और आप भी पैंट शर्ट पहनो और कांटे चम्मच के साथ में आप भी खाना सीखो। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं यहाँ पर कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने साफ कह दिया अगर कोई कुछ ग्रहण करेगा मुझसे तो ग्रहण करे, मुझे किसी से कुछ ग्रहण नहीं करना है, है ना। तो उन्होंने कहा कि आपसे फिर कौन कुछ सीखेंगे, कि प्रभुपाद जी सीखें ना सीखें, लेकिन जो कृष्ण का संदेश है मैं किसी को खुश करने के लिए बदलने वाला नहीं हूं। और देखो सब खुश हुए। ये भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद ने प्रदान की, यथारूप का मतलब जो कृष्ण ने बातें कही हैं वही प्रभुपाद ने बताई हैं, कोई बात आपने जोड़ी नहीं है ना। इसलिए पूरी दुनिया में लोग कृष्ण के भक्त बने, है ना। तो इस तरह से जो है अर्जुन चूंकि कह रहे हैं प्रसिद्ध देव जगन निवास, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रसन्न हो जाओ बस, ये न के न प्रकार है, जिस किसी प्रकार से भी आप झालो कृष्ण को प्रसन्न कर लो तो बस आपका सब काम बन गया है ना, फिर और कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता, इसके ऊपर और कोई काम नहीं होता है, कृतकृत्य हो गए आप। कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रश्न
शिक्षा में क्या आप जो
तो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में भी ये 24 नाम बताए गए हैं और क्रम जो उनके आयुध हैं भगवान के उनके क्रम के अनुसार अगर आप क्रम बनाएंगे ना तो चार हाथों में चार आयुध हैं उनको अलग अलग बनाएंगे तो 24 आएगा, ठीक है ना। तो ये आता है इस तरह से और वो सब बताए भी कि कैसे 24 आए, मैंने पढ़ के सुनाया ना, तो वो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में भी वो बताया गया है, आप उसको देख लेना, हमने देखा है ना 24 हैं, वही चीज है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है वो सब जो ना उसी प्रकार से बताया गया है। अच्छा ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा है कि मैंने आपको पहले इस रूप में नहीं देखा है तो देख करके मैं हर्षित हूं, तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या हमें समझना चाहिए, कौन बताएगा?
सखा जो है भगवान
कि अर्जुन जो है ना क्योंकि मित्र हैं भगवान के इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। हाँ, इसको और थोड़ा और समझाइए। कृष्ण भगवान है तो अर्जुन प्रसन्न हो रहे हैं ये समझ करके, तो इसमें हमने कुछ तुलना दी थी क्या? एक कुछ समझने के लिए हमने कुछ तुलना बताई थी कि अर्जुन प्रसन्न है तो चूंकि अर्जुन मित्र हैं भगवान के इसलिए प्रसन्न है, है ना। तो इसमें हमने कुछ समझाया था नहीं? हाँ, मित्र जो है ना, मित्र का मतलब ही है, मित्र का मतलब ही है क्या कि अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख करके प्रसन्न होता है। अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख करके प्रसन्न होता है, है ना। और हमें मित्र बनना चाहिए भगवान का, हमें भगवान का मित्र बनना चाहिए। जो शत्रु होता है तो जब देखता है अपने शत्रु के ऐश्वर्य को तो उसका दिल जलता है, है ना। जब उसको पता चलता है करोड़पति बन गया तो उसका जो उसको बुखार चढ़ जाता है, है ना। और जब उसको देखता है कि वो 10 करोड़ हो गया उसको, तो उसका जो ना बुखार और तेज हो जाता है। जब उसको लगता है, उसको पता है 100 करोड़ हो गया उसका, तो फिर उसका जो ना हार्ट अटैक हो जाता है, है ना। लेकिन जो मित्र होता है वो और प्रसन्न होता है, है ना। अर्जुन प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। और हमारी जो बीमारी भौतिक संसार की जो बीमारी वो यही है कि हम क्या सोचते हैं कि कृष्ण क्यों भगवान है, मैं क्यों भगवान नहीं हूं, है ना। तो आजकल गाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना। तो एक बार हमने किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा था, वो क्या था, कुछ ऐसे शब्द थे उसमें कि कृष्ण अगर छेड़ते हैं तो उनकी लीला, अगर हम छेड़ते हैं तो पाप, तो वो बड़ा दुख से जो ना उसमें लिखा गया है कि कृष्ण जब छेड़ते हैं तो लीला होती है, और हम जब छेड़ते हैं तो कहते हैं कि पाप कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। तो कितने हैं, मतलब उनको ईर्ष्या हो रही है कि कृष्ण जो ना तो भोगते हैं लेकिन हम नहीं कृष्ण की नकल कर सकते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है। तो यही जो है ना ईर्ष्या है। लेकिन जो मित्र है वो प्रसन्न होता है, अर्जुन मित्र है। सुदामा एक सज्जन है, उन्होंने अखबार में भी जो ना अपना कुछ विज्ञापन निकाला है ना, तो अपने को निर्धन मान करके, निर्धन समझ करके अपने को सुदामा घोषित कर दिया कि हम सुदामा हैं। तो यहाँ कृष्ण के मंदिर में हम आए तो हमारा कोई स्वागत नहीं हुआ, हमारी किसी ने पूजा नहीं की, तो आजकल के सुदामा ऐसे हैं, है ना। इन जो द्वापर युग में जो सुदामा थे तो वे निर्धन थे, तो उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं कृष्ण से मिलूंगा तो मुझे कृष्ण धन देंगे, ज्यादा धन देंगे या थोड़ा धन देंगे, नहीं। वो सोचते हैं कि अगर कृष्ण से मिलूंगा तो यही बहुत बड़ा लाभ है कि कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, मित्र के दर्शन हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा लाभ है। कम से कम ये देख करके जो है ना आनंद होगा कि कृष्ण कितने सुखी हैं, है ना। तो सुदामा जी ये आनंद लेने गए थे, और जब द्वारका में देखा कृष्ण का ऐश्वर्य तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं कृष्ण का इतना ऐश्वर्य क्यों है, मेरा क्यों नहीं है, है ना, ऐसा नहीं सोचा। और जब कृष्ण कुछ नहीं दिया तो रास्ते में क्या सोच रहे थे कि कृष्ण कुछ नहीं दिया है, ये भी कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने सोचा कि ये मूर्ख ब्राह्मण मुझे भूल जाएगा, इसलिए कृष्ण मुझे कुछ नहीं दिया। सुदामा जी को पता नहीं था कि किसने कितना दिया है, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि किसने कुछ नहीं दिया है तो भी कृपा देखते हैं कृष्ण की, ये भी कृष्ण की कृपा है। और जब गए वहां और देखा कि किसने असीमित उनको संपत्ति दी है, तो उन्होंने सोचा कृष्ण की कितनी कृपा है कि मुझे इतना दिया है, है ना। तो ये जो है मित्र का ये कार्य, सुदामा मित्र है इसलिए ऐसे सोच रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी का? तो फिर सुदामा ने जो है यही प्रार्थना की, सच्ची दिल से यही कामना की कि मुझको जो है बस एक ही मेरी इच्छा है, एक ही मेरी कामना है, मनोकामना है, क्या? जन्म जन्म कृष्ण की मित्रता प्राप्त हो। जन्म जन्म एक ही चीज चाहिए मुझे बस, और मुझे चाहे कुछ ना मिले, क्या मिले? कृष्ण की मित्रता बस, और कुछ नहीं। और कृष्ण जो है ना कैसे है, बादल के समान है। बादल किसान का मित्र होता है, तो बादल क्या करता है कि किसान के जब जागता है किसान तब तो बादल बरसाता नहीं पानी, जब किसान सो जाता है तो रात में पानी बरसाता है और किसान की खेती को हरा भरा करता है रात में। तो प्राचीन काल में बादल रात में बरसा करते थे, तो कृष्ण जो ना उस बादल के समान है। मतलब कृष्ण ने सुदामा को सामने तो कुछ नहीं दिया, ये पीठ पीछे कितना दिया, कितनी कृपा करी, है ना, ये सोचते हैं। हाँ,
जैसे कृष्ण मुख में बताया गया है जो गोपी लोग जो है कृष्ण का,
तो आखिरी प्रश्न है इनका, प्रश्न है कि जो गोपियां हैं तो कृष्ण के प्रति काम भाव से आसक्त हैं और वे जो है ना शुद्ध हो गई, तो हम जो है ना अगर हमारे अंदर भौतिक कामना है तो फिर क्यों नहीं हम शुद्ध होते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कृष्ण का तीव्र चिंतन, कृष्ण का तीव्र चिंतन होना चाहिए। जो गोपियां हैं वो कृष्ण के रूप में आ सकते हैं तो कृष्ण को पाना चाहती हैं, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन वो कृष्ण का चिंतन करती हैं दिन रात। या जैसे शिशुपाल था, वो कृष्ण का शत्रु रूप में चिंतन करता था, तो दिन रात वो कृष्ण का चिंतन करता था, कृष्ण के रूप का ही चिंतन करता था। और इससे क्या हुआ, उसके अंदर कोई भौतिक कामना ही नहीं रहती थी, सब भौतिक कामनाएं समाप्त हो गई। वो कृष्ण से द्वेष कर रहा है, इतना द्वेष कर रहा है कि उसकी भौतिक कामनाएं समाप्त हो गई। कंस का भयभीत था, तो कृष्ण से इतना भयभीत था, वो कृष्ण को मार डालना चाहता था, तो इतना भयभीत था कि उसकी इंद्रिय तृप्ति के सब विचार खत्म हो गए। वो दिन रात कृष्ण का चिंतन कर रहा है, भय में चिंतन कर रहा है, इस प्रकार से वो शुद्ध हो गई। लेकिन इस प्रकार की जो तीव्रता है ना हमारे अंदर नहीं है, है ना। जो कृष्ण का अनन्य चिंतन करे, अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्य माने अन्य और किसी का चिंतन नहीं करे, कृष्ण का ही चिंतन कर रहा है, चाहे शत्रु मान ले कृष्ण को, लेकिन एकमात्र वही शत्रु और कोई नहीं है। कोई अपना पति मानती, एकमात्र वही पति है और कोई नहीं।